ओम शांति। बोरीवली की बगिया में शिलू बहन का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। प्रोक्ष अप्रोक्ष रूप से मैं समझती हूँ सभी आपसे परिचित होंगे। कौन है जो शिलू बहन को नहीं जानते हैं? हाथ खड़ा करेंगे? देखो सभी पहचानते हैं, क्योंकि आपको कई वर्ष पहले ही, मधुबन आने से पहले ही आपको टीवी में सबने देखा और सुना है। आप 12 वर्ष की आयु से ही इस ज्ञान मार्ग में चले हैं और 1960 में आप समर्पित हुए, ज्ञान दिया है। 1960 में आपने ज्ञान प्राप्त किया और 69 में आप ईश्वरीय सेवा में समर्पित हुए और पिछले 35 वर्षों से आप यहाँ मधुबन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और यहाँ पर विशेष योग शिविर की आप सेवाएं देते हैं और ट्रांसलेशन की भी सेवाएं हैं और ज्ञान सरोवर में भी अलग अलग कार्यक्रमों में आपका विशेष योगदान रहता है और टीवी चैनल्स, अलग अलग टीवी चैनल्स में आपके लेक्चर देश विदेश के लोग सुन करके बहुत ही प्रभावित होते रहे हैं और बाबा के ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। आप देश के कोने कोने में ईश्वरीय सेवार्थ गए हैं, करीब 60 देशों में आपने सेवार्थ भ्रमण किया है और यहाँ पर भी जब बाबा का टर्न होता है, अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, ट्रांसलेशन की सेवा भी आप देते हैं। आप एजुकेशन विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और आप विशेष रूप से मधुबन में विशेष सेवाओं के निमित्त हैं। जब ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में मैं चली थी तो आपका जो सबसे पहला ये कमेंट्री सीडी कैसेट जो सुना, बहुत ही सुखद अनुभव होता था और आज भी उसको सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और आज भी उसी से मैं कई बार योग करती हूँ। आपकी मधुर वाणी से ऐसी अनुभूति होती है कि बाबा के बिल्कुल समीप पहुँच गई, तो इसलिए आज सभी को बहुत खुशी है। एक ऐसा अनुभव है कि कभी कभी कई भाई बहने जिनको गलत फहमी होती है पूछ लेते हैं, आप शिलू बहन हैं? मैं कहती हूँ नहीं, मैं शिलू बहन नहीं हूँ, मैं उनकी बहन हूँ। तो विशेष रूप से मुझे नमस्ते करते हैं, शायद वो अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि शिलू बहन से नहीं, कम से कम उनकी बहन से मिल लिया, तो इसलिए बहुत खुश होते हैं। तो इसलिए मेरे को भी गौरव होता है कि आपके साथ मुझे भी कई बार याद करते हैं, इसलिए आज जो आप मम्मा बाबा से भी आपने पालना ली है,
चश्मे वाली सब एक जैसी
चश्मे वाले के ऐसा समझते हैं कई भाई बहने, तो आपने मम्मा बाबा की पालना ली हुई है इसलिए आपकी मधुर वाणी सबको बहुत ही प्रभावित करती है। बाबा ने भी, अव्यक्त बाप दादा ने भी आपको कई सुंदर टाइटल दिए हैं। आपके लिए दो शब्द कहूंगी, नैनो में है दुर्गा, जीवा में है सरस्वती, दिव्य गुणों का साज आपके करीब है। नैनो में है दुर्गा, जीवा में है सरस्वती, दिव्य गुणों का साज आपके करीब है। आपको देख करके शिलू बहन लगता है कि तमाम दुनिया बहुत गरीब है, तमाम दुनिया बहुत गरीब है। अच्छा, आदरणीय शिलू बहन, आज का विषय है आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास विधि।
ओम शांति। आप सभी बाबा के इस बेहद घर में बत्ती करने के लिए आए हो, मधुबन तपोभूमि है, वरदान भूमि है, तो बहुत बड़ी परिवर्तन भूमि भी है। जो भी आत्मा यहाँ आती है, कैसे बाबा उनकी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, स्थिति सबको, सब कुछ बदल देते हैं। जो भट्टी में आते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी परिवर्तन भूमि है। भट्टी में पकना होता है, भट्टी माना जिसमें पड़ने से परिवर्तन हो जाता है। जैसे आग में कोई चीज पड़ी तो बदल जाती है, वो कौन सी चीज है उस अनुसार परिवर्तन होता है। मिट्टी डालो, ईंट बनाकर, वो कच्ची मिट्टी, वो मिट्टी है, लेकिन जैसे ही भट्टी में डालते हैं तो वो ईंट बन जाती है ना, कठोर मजबूत हो जाती है वो मिट्टी। तो आग में पड़ने से कमजोर चीज मजबूत बन जाती है। फिर आग में सोना डालो तो अशुद्धता उसमें से निकल जाती है, शुद्ध हो जाता है। तो अग्नि मजबूत भी बनाती है तो शुद्ध भी बनाती है, और कोई ऐसी कठोर चीज उसमें डालो तो नरम भी हो जाती है। बैंगन, टमाटर, आलू आग में डालते तो क्या होता है, सख्त होता है, लेकिन जैसे ही आग में वो सब्जी पड़ी वो नरम हो जाती है। तो इसी प्रकार इस भट्टी में जो बहुत कठोर हृदय के हैं, कठोरता है, संस्कार बदलते नहीं है, कठोर है, जैसे कोई कठोर चीज होती है ना वो मुड़ती नहीं है, लेकिन इस भट्टी में वो नरम हो जाती है, निर्मल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो बाबा ने हम बच्चों को ये भट्टी में बिठा करके परिवर्तन करने का एक बहुत सुंदर मौका दिया है। तो सबसे पहले परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है, आत्म अभिमानी स्थिति। बिना आत्म अभिमानी स्थिति के परिवर्तन नहीं आएगा। योग अग्नि भी तब तपे जब आत्म अभिमानी स्थिति हो। और आत्मा का पाठ शुरू से ही बाबा ने हमें पढ़ाया है, और जो शुरू का पाठ है वही अंत का पाठ होगा। अंत में भी एक ही पेपर जो आएगा, एक सेकंड का पेपर आएगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का जो अंतिम पेपर होगा वो इसी का ही होगा कि एक सेकंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाए। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, आप मोए मर गई दुनिया। वैसे भी लौकिक दुनिया में कोई मरता है तो उसके लिए दुनिया ही मर गई। आत्मा शरीर से अलग हो गई तो शरीर खत्म, तो उसके साथ शरीर के साथ जो भी शरीर से संलग्न बातें हैं, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, जो कुछ भी वो जीवन में बातें थी सब भूल जाती है, अगले जन्म में वो याद नहीं रहती। तो इसी प्रकार बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि आत्म अभिमानी स्थिति का मतलब ही है मर जीवा बनना। शरीर तो नहीं छोड़ते, जीवन तो वही है, जन्म शरीर वही है, माँ बाप लौकिक सब वही है, लेकिन भगवान की गोद में हम नया जन्म लेते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा, क्षमा पर परवाने फिदा होते हैं, और फिदा हुए माना मर गए। तो भगवान हमें जीते जी मरना सिखाते हैं। वैसे भी दुनिया में मानते हैं कि भगवान से तब मिल सकते हैं जब पहले मर जाएं, बिना मरे भगवान नहीं मिलता, मरने के बाद ही भगवान मिलता। अभी कहाँ गया, भगवान के पास गया। तो भगवान के पास कब जाना होता है, मरने के बाद ही ना। मरे बिना स्वर्ग भी कोई नहीं जाता। जब कोई मरता है तो कहेंगे भाई स्वर्गवासी हुआ, तो स्वर्ग भी तब जाएंगे जाएंगे जब मरेंगे। मरने के बाद भगवान के पास भी जाते हैं और स्वर्ग में भी जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वास्तव में ये जीते जी मरने की बात है। भगवान को हम तब पहचान सकेंगे जब पहले देही अभिमानी बनेंगे। शिव बाबा तो सदा ही विदेही है, पर हम बच्चों को सबसे पहले आकर के अपने जैसा विदेही बनाते हैं। फिर संपूर्ण संपन्न कर्मातीत, ये बात की बात। लेकिन जैसे बाबा देही अभिमानी है, उनको शरीर का कोई अभिमान नहीं, वैसे ही बाबा हम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। तो कभी बाबा कहते अशरीरी बनो, कभी बाबा कहते देही अभिमानी बनो, कभी बाबा कहते विदेही बनो। बात तो वही है, अशरीरी बनना, देही अभिमानी बनना और विदेही बनना। तो विदेही देह से न्यारे बन जाना, देही बन जाना, विशेष रूप से आत्मिक स्थिति में रहना, देह के अंदर जो आत्मा विराजमान है देही, उस देही स्वरूप में खुद को टिकाना, ये सब देही अभिमानी की स्थिति है। ब्रह्मा बाबा ने यही पहला अभ्यास किया। शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो ब्रह्मा बाबा ने अपना पुरुषार्थ कैसे किया? सबको आत्मा देखते थे, परिवार से मोह तो था, बाबा की युगल थी, बाबा के बच्चे थे, बहू थी, बाबा का अपनी बहू में बहुत मोह था, विजिंद्रा दादी बाबा की लौकिक बहू थी, बहुत बाबा से प्यार था, बाबा का भी उनसे बहुत प्यार था, बच्ची से ज्यादा बहू में प्यार था बाबा का विजिंद्रा दादी, और बहुत सुंदर भी थी। निर्मल शांता दादी बाबा की बेटी थी, लेकिन ब्रजेंद्रा दादी बाबा की बहू थी, पर वो भी कम सुंदर नहीं थी। निर्मल शांता दादी तो थी, लेकिन वो भी कम नहीं थी बहू। तो बाबा दोनों को, कभी बेटी को कभी बहू को, लौकिक में गहने पहना करके राजाओं के पास ले जाते थे, और वो राजा रानियां जो थी वो उनके गहने देखती थी, हीरो के गहने पहनाते थे, तो कहते थे बस हमको ऐसा ही चाहिए, यही चाहिए। तो बाबा तो जानते थे कि ये पसंद करेगी, क्योंकि इतना सुंदर उनको पहनाते थे। तो फिर दूर जाकर के अब तो वो रानी को कहते थे मैं लाया हूँ आपके लिए, लाया हूँ, मुझे मालूम था आपको ऐसा पसंद आएगा। तो बाबा क्या करते थे, दूर जाकर के बहू को कहते थे बेटी ये निकाल दो और ये इनको दे देंगे। तो मानो बहू और बेटी बाबा के लिए एडवर्टाइजमेंट का काम करते थे। ये बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि उनको पहना करके लेके जाते थे राजाओं महाराजाओं के पास, और थोड़ी दूसरा लेकर के आएंगे, वही लाए थे ना, तो फिर उनको दूसरा पहना देते थे, तो क्या ये आपके लिए। तो बहुत मोह था बाबा का। तो जैसे ही शिव बाबा की प्रवेशता हुई और बाबा स्वयं देही अभिमानी बने, लेकिन उनके प्रति जो मोह था, जो इतना प्यार था, वो कैसे निकले? मैं ससुर हूँ, मैं पति हूँ, मैं बाप हूँ। तो बाबा आत्म अभिमानी स्थिति का बहुत अभ्यास करते थे, हर बार मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, कहाँ ये भान मैं पति हूँ, मैं बाप हूँ, आदि आदि, मैं ससुर हूँ, ये न सोच करके मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। युगल को देखे, यशोदा को बाबा देखते थे, जो उनकी युगल थी, ये आत्मा है, ये आत्मा है। हम कई बार पूछते हैं कि किसको ज्यादा मेहनत लगी होगी, बाबा को, यशोदा को आत्मा देखने में, या यशोदा को बाबा को आत्मा देखने में? युगल थे ना। आज भी बाबा ने वरदान में युगल का जिक्र किया कि हमारा कंबाइंड रूप कौन है? शिव बाबा है, आत्मा परमात्मा का कंबाइंड रूप, वो युगल जोड़ी है। बाकी ये तो निमित्त मात्र संबंध है। तो जब बाबा में परिवर्तन आया तो कैसे अपने से बाबा ने पुरुषार्थ किया? आज बाबा ने कहा चीटी मारक का पुरुषार्थ करते हैं बच्चे, तो क्या पुरुषार्थ किया? आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ किया। तो कई बार हम पूछते किसको ज्यादा मेहनत लगी होगी, बाबा को या उनकी युगल को? हा? बाबा को लगी होगी मेहनत ज्यादा या युगल को लगी होगी? हा? बाबा को। जो समझते बाबा को हाथ उठाए, जो समझते युगल को हाथ उठाए। अच्छा, तो बहनों को ज्यादा मेहनत लगी। भाइयों को कम। खैर हम तो नहीं जानते किसको मेहनत, क्योंकि हम तो उस समय थे नहीं ना। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का। तो बाबा दीवारों पर लिखते थे यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है। बाबा की बहू का नाम राधिका था, ब्रजेंद्रा दादी। राधिका आत्मा है, यशोदा आत्मा है, सब जगह दीवारों पर लिखते थे। अब नेचुरली खुद लिखते थे तो खुद तो उस स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करते थे कि मैं इनको जब भी देखूं तो आत्मा देखूं। परंतु इसके पीछे दूसरा भी राज था कि जब वो भी पढ़े दीवारों पर तो वो भी क्या पढ़े, तो यही पढ़े यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, ताकि आत्म अभिमानी स्थिति से जो थोड़ा बहुत भी मोह था या थोड़ा बहुत भी संबंध का भान था वो मिट जाए, आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि रहे। तो मैं कई बार उदाहरण देती हूँ महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने भी सोचा कि अगर अंग्रेजों को दूर करना है इस देश से तो ब्रह्मचर्य की शक्ति से ही हो सकता है, क्योंकि सत्य और अहिंसा ये उनके मूल हथियार थे। पर ये सत्य और अहिंसा की अनुभूति या शक्ति तब मिलेगी जब ब्रह्मचर्य की ताकत होगी। तो महात्मा गांधी ने बहुत मेहनत की अपने आप को संयम में रखने की, उनकी किताब में आता है। परंतु कई बार वो फेल हो गए, वो नहीं ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। हालांकि कस्तूरबा उनसे ज्यादा पावरफुल थे, वो बहुत मजबूत थी, पर महात्मा गांधी ने लिखा है अपना अनुभव कि मैं कमजोर था, वो ज्यादा बहादुर थी। तो इसने सोचा कि मैं कैसे इसको मैं अपने जीवन में अपनाऊं, क्योंकि यही ताकत है जीवन की, संसार के अंदर यही सबसे बड़ी ताकत है, ब्रह्मचर्य की ताकत। ये सब सबके बजने लगेंगे ना वो मोबाइल। तो इसीलिए उसने कहां से प्रेरणा ली? स्वामी रामकृष्ण परमहंस से प्रेरणा ली कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कैसे अपनी जो युगल थी उनकी शारदा माँ, उनको माँ कहा। वो तो बचपन में ही, छोटेपन में उनकी शादी हो गई थी, ये तो बाद में सन्यासी बना स्वामी रामकृष्ण परमहंस। लेकिन उनको अपने पास रखा और पहले दिन से जैसे ही वो आई माँ कहकर के उनको बुलाया, शारदा माँ। तो अपनी पत्नी को माँ के रूप में देखा, तो उससे प्रेरणा ली महात्मा गांधी ने। और कस्तूर बा, ये बा कहा, बा माना माँ गुजराती में। तो जब बा कहा तब उसकी दृष्टि बदल गई, उसको माँ के रूप में देखा। अब ब्रह्मा बाबा ने यशोदा को किस रूप में देखा होगा? माँ कहने की तो जरूरत ही नहीं, वो तो अलौकिक माँ भी उनकी बेटी थी मम्मा। परंतु आत्मिक दृष्टि कैसे एक सेकंड में बाबा ने उनकी बना दी, और यशोदा को भी अवश्य शिव बाबा की ताकत मिली होगी, क्योंकि सब उनको बाबा कहे तो खुद भी बाबा पति को क्या कहने लगी होगी, बाबा। मम्मा की लौकिक माँ सब उनकी बेटी को माना मम्मा को माँ माँ मम्मा मम्मा कहे तो उनकी माँ ने क्या कहा होगा, वो तो नहीं बेटी कहेगी, उनको मम्मा कहा। तो कैसे दृष्टि बदल गई, तो जो पहला पाठ था वही अंतिम पाठ भी होगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, इसी पाठ से ही बनेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अचानक का भी पाठ होगा, उसके लिए एवर रेडी भी होना है, और फिर बहुत काल का अभ्यास, जो एक सेकंड में आत्मा देह से न्यारी हो जाए। तो वो अभ्यास हम कैसे करेंगे? आत्मा का ज्ञान होना कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया वाले भी आत्मा आत्मा करते रहते हैं, परंतु मैं वो आत्मा हूँ ये नहीं समझते। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि वो तो यही कहते हैं आत्मा तो निर्लेप है। अब निर्लेप कह दिया तो बाबा कहते सारा खेल ही खत्म। फिर कर्म कौन करता है, फल कौन पाता है, सब खत्म। फिर सारा शरीर पर, फिर आत्मा हूँ ये कहाँ से आया? पर मैं आत्मा हूँ, कर्म मैं ही करती हूँ, फल मुझे ही पाना है, पर मैं कौन सी आत्मा हूँ? वो श्रेष्ठ आत्मा, वो स्वमानधारी आत्मा हूँ, ये निश्चय। और उस निश्चय के साथ साथ वैसा अभ्यास जो बाबा हमें नित्य कराते, रोज नया नया अभ्यास, क्योंकि यही अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा। नहीं तो बाबा कहते माया वो धोखा देगी। आज भी बाबा ने कहा ना, नाक और कान से पकड़ती है, तो कान पहले कान से पकड़ती है। कैसे कान से पकड़ती है? मुरली सुनने नहीं देती, लेकिन कान से कैसे पकड़ती है? फालतू बातें, जिसको बाबा कहते हैं झरमोई जंगमोई, वो कानों में पड़ती रहती है। वो माया, यहाँ की बात, इधर की बात, उधर की बात, पर चिंतन, वो उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ये माया कान से पकड़ती है। फिर नाक से कैसे पकड़ती है? नाक से जब किसी को पकड़ा जाता है ना, तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ऐसे ऐसे करता है ना। तो जैसे पर चिंतन सुना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, अरे ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, तो फिर हम कहा? हाँ? तो हम तो बड़ा मुश्किल कर सकेंगे। तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, जैसे सांस घुट गया थोड़ा, तो माया ने नाक से पकड़ लिया। फिर माया चोटी से पकड़ती है। चोटी से कैसे पकड़ती है? भाइयों को तो चोटी नहीं है, बहनों को तो है, लेकिन चोटी से पकड़ना माना सिर जो है ना, वो थोड़ा पीछे हो जाता है। पीछे माना अभिमान, अभिमान जिसको होता है ना, उसका सिर ऊंचा होता है बहुत। जो नम्र होता है उसका सिर नीचे होता है, झुकता है, या तो नम्रता से झुकता है या तो डर से झुकता है, दोनों बातों से झुक सकता है। किसी ने कोई पाप किया है और उसको कहते हैं तुमने किया है, अंदर मन खाता है, तो सिर झुक जाता है। लेकिन नम्रता में भी झुकता है, जिसको हाथ जोड़ते हैं तो सिर भी झुकता है कि नहीं? हाथ तो जोड़ते हैं लेकिन ऐसे भी सिर करते हैं। परंतु ऐसा सिर वाना अभिमान, मेरे जैसा कोई नहीं। तो अभिमान जब आता है तो सिर मानो माया ने चोटी पकड़ ली, तो सिर ऊंचा हो गया, ऊपर चला गया। फिर थप्पड़ मारती है माया। तो थप्पड़ कैसे मारती है? थप्पड़ मारने से क्या होता है? मुंह फेर देती है, मुंह फिर जाता है। थप्पड़ किसको मारी तो सीधा थोड़ी वो खड़ा रहता है, क्योंकि ये तो जल्दी गर्दन हिल जाती है, तो मुंह फेर लेती है, तो दुनिया के तरफ मुंह चला जाता। अब जैसे ही दुनिया के तरफ मुंह गया तो फिर माया ठोंसा मारती है, मुक्का मारती है। तो मुक्का मारना माना कोई न कोई विकार के वश हो जाते हैं, तो गिरा। और जैसे ही नीचे गिरा बेहोश हो गया। फिर बेहोश करके फिर खत्म भी कर देती है, वो कर्म में भी ला देती है। संकल्प में आया, वचन में आया, कर्म में आया, तो खेल खत्म, मर गया। बाबा के पाक गोदी से मर करके दुनिया की गोदी में जा करके जीता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बड़ा खबरदार रहना, अंत के समय तो ये बहुत बड़ी परीक्षाएं आएगी। माया की परीक्षा किस रूप में अंत में आएगी? अपने ही पुराने संस्कारों के रूप में आएगी। अगर चलो उस पर भी जीत पाई, लेकिन दूसरों के संस्कारों के रूप में भी आएगी। तीसरा प्रकृति के रूप में भी आएगी। चौथा भूत प्रेत के रूप में भी आएगी, उस रूप में भी आ सकती है। कई प्रकार से माया आ सकती है और हमें फेल कर सकेगी, लेकिन उसके लिए अभ्यास क्या जरूरी है? कैसे ये क्यों मोबाइल बंद नहीं कर देते हैं? मोबाइल बंद करके हॉल में आना चाहिए, बिल्कुल सब बंद। भट्टी में मोबाइल क्यों चलने चाहिए? जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को डायरेक्शन मिली है कि नहीं? मिले है ना, तो फिर क्यों मोबाइल बज रहे हैं? बजने नहीं चाहिए। हाँ, जैसे ही क्लास में आओ, जरूरत ही नहीं है, जो आएगा उसको दोपहर को क्लास के बाद 1 से 4 बजे तक आपके पास टाइम है, वो भले खोलो उस समय, बाकी बंद। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि माया अंत में बहुत रूपों से आ सकती है। तो किस प्रकार का अभ्यास हम करें? जब पहले बाबा कहते हैं कछुए समान हो जाओ, जैसे कछुआ 1 सेकंड में अपने इंद्रियों को निग्रह कर लेता है। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि कछुए जितना भी अकल नहीं है क्या? कछुए जितना भी अकल नहीं है, उसको कितना बड़ा अकल है? कछुए को क्या अकल है? चल रहा है कछुआ, देखा है कैसे चलता है, कैसे धीरे धीरे। तो देखता है कुछ ऐसी विघ्न आ गया, सीधे सीधा अपने हाथ पैर सिर सब अंदर किया। देखता है, आपने देखा है कभी कैसे अंदर करता है? एक बार इंटरनेट में हमने एक जगह पढ़ा था, बड़ा अच्छा लगा कि सबसे जितने भी जीव जंतु जानवर पक्षी मनुष्य तक सबसे ज्यादा आयु किसकी होती है? कछुए की। और क्यों कछुए की आयु इतनी ज्यादा है? क्योंकि वो अपने आप को सिकोड़ना जानता है। 500 साल तक कछुए जीते हैं, 500 साल। कोई नहीं, ना इंसान तो कभी नहीं जिया, वो सत्यु में भी नहीं जिएगा। वहां भी केवल 150 साल तक की आयु होगी मैक्सिमम प्रकृति के संसार। तो ये 500 साल तक कैसे जीता है? मैं बीच में पता नहीं कौन से देश में गई थी, शायद बर्मा गई थी, बर्मा या थाईलैंड या पता नहीं वियतनाम, इन देशों में कहीं गई थी। तो वहां पर बताया कि ये कछुआ देखने के लिए लोग जाते हैं। वो 500 साल का कछुआ है, बहुत बूढ़ा, और वो पानी में उसको टैंक में रखा हुआ है। इतना बड़ा कछुआ, इतना बड़ा उसका पकेट, ये 500 साल का है। तो मानो सबका दादा परदादा, कितने उसने क्या नहीं देखा होगा। तो क्यों? क्योंकि वो न्यारा होना जानता है। और सबसे कम आयु किसकी होती है? मच्छर की। कुछ घंटे ही जीता है बस, है ना, उसकी पूरी आयु उतना ही घंटे होती है। जो ज्यादा बहुत एक्टिव, उसकी आयु उसी अनुसार कम। मच्छर कितना एक्टिव, बापरे बापरे, हाँ दौड़ता ही था, दौड़ता ही रहे, 1 सेकंड का भी उसको चैन नहीं है, है ना। तो कितनी आयु है उसकी? कीड़े मकोड़े देखो थोड़ा है, चींटी उसकी थोड़ी ज्यादा होगी, पक्षी की तो कितनी होगी, कुत्ता बिल्ली 10-12 साल बस, इनकी इतनी आयु है। तो क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस में नहीं है, तनाव में नहीं है। तो मानो चलो अशरीर ही बनना है, उसको आत्मा का ज्ञान तो नहीं होगा ना कछुए को। आत्मा का ज्ञान क्या होगा? लेकिन हम मनुष्य आत्माओं को तो है ना। तो कैसे? देखो बाबा ने इतना सुंदर हमें उसकी युक्ति बताई, हर घंटे घंटे ये गीत बजाओ, घंटे घंटे में आपको वो ताकीद करे अभी अभी अशरीरी बन जाओ 1 मिनट के लिए। बाबा ने जो 5 स्वरूपों का हमें दिल कराई है, ये भी अशरीरी बनने की युक्ति है। ऐसे नहीं कि हम देवता थे या हम पूज्य स्वरूप है तो उसमें अशरीरी नहीं है, क्योंकि देवता स्वरूप में भी तो आत्मा का ज्ञान तो है ना, और पूज्य स्वरूप में भी आत्मा उस पवित्र चोले में है तभी तो वो पूजा के योग्य भी है, भले मूर्ति बनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं गुड्डा गुड्डी नहीं बनता हूँ। हम बच्चे बनते हैं ना गुड्डा गुड्डी, हमारी पूजा होती है ना गुड्डे गुड़ियों की, तो पूजा होती है। लेकिन वो क्यों पूजा होती है, पूजा किसकी होती है? वास्तव में पूजा होती है पवित्रता की। कोई देह की पूजा की बात नहीं है, पूजा है पवित्रता की, आंतरिक शक्ति की पूजा है। तो बाबा भी जो हमें कहते पांच स्वरूपों की ड्रिल करो, ये भी आत्म अभिमानी स्थिति का ही अनुभव है, पर दूसरे दूसरे रूप से। देवताओं को अपना स्वमान होगा, पूज्य स्वरूप को अपना स्वमान होगा, ब्राह्मणों का अपना स्वमान है, फरिश्तों का अपना स्वमान है, परम धाम में आत्मा की जो स्थिति है बीज रूप की वो अपना स्वमान है। तो वो सारे स्वमानों का अभ्यास यही अशरीरी स्थिति का अनुभव कराता है। कभी बाबा कहते पांच मिनट तो एक एक मिनट एक एक के लिए दो। अच्छा वो नहीं कर सकते हो तो एक मिनट में पांचों स्वरूप, ये भी हो सकता है। एक सेकंड के अंदर भी, पांच सेकंड में भी पांच स्वरूप का अनुभव कर सकते, ड्रिल है, जितनी फास्ट करना चाहो करो, पर उतने ही उसके बाद एकदम हल्के है। एक सेकंड में अपने भृकुटी तख्त पर विराजमान हो जाओ। राजा को अपने तख्त पर बैठने में कितनी देर लगनी चाहिए? एक सेकंड। सोचा मैं कौन हूँ और बैठ गया अकाल तख्त पर। मैं कौन हूँ, लगा दिया विजय का तिलक, विजयी आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ, जैसे ही स्वमान आया मैं वो शुद्ध आत्मा हूँ, तो मैं अनादि स्वरूप में कितनी शुद्ध थी, एकदम परम पवित्र भाव समान। तो एक सेकंड में वो अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चिंतन बहुत काल का चाहिए। स्थिति तो एक सेकंड की है, चलो उस स्थिति से नीचे भी आ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो स्थिति सहज भी लगेगी और ज्यादा समय भी चलेगी। जैसे कई बार अभ्यास नहीं होता है तो बहुत जल्दी उसको छोड़ देते हैं, पर जैसे अभ्यास होने लगता है तो उसका सुख जब लेना शुरू करते हैं, आनंद लेना अनुभव करते हैं, तो फिर धीरे धीरे ज्यादा समय उसमें टिक सकते हैं। हर चीज का ये अनुभव है। गाड़ी चलाना कोई सीखते ना, पहले तो कितना डर लगता है, कैसे गाड़ी चलाएंगे, कैसे होगा, बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे शुरू करते हैं थोड़ा लगता है, झटका आया, लेकिन जैसे थोड़ा अभ्यास होता जाता है तो क्या लगता है, सहज, स्टीयरिंग व्हील को चेंज कर सकते हैं, बड़ा सहज, बहुत सहज। फिर मुश्किल लगता है, पर जैसे अभ्यास बढ़ाते जाओ सहज होता जाएगा। तो ये भी तो ऐसे ही है। एक बहन थी, वो अपना अनुभव सुना रही थी कि मुझे जैसे योग में बिठाया गया और कमेंट्री दी गई तो मैं तो अशरीरी हो गई, पर जैसे ही मैं हो गई, इतनी हल्की हो गई, तो मुझे तो डर लगने लगा। मैंने कहा डर क्यों लगा, तो कहा कहीं मैं आत्मा उड़ न चली न जाऊं शरीर से, तो शरीर से चली न जाऊं, माना मर न जाऊं, तो वापस आ गई। मैं जा रही थी वापस आ गई क्योंकि डर लगने लगा। तो हमने कहा डरने की कोई बात ही नहीं, अगर आत्मा शरीर हो जाती तो अच्छा है ना, हल्के हो गए तो। क्या मर गई तो ये मरेंगे क्यों, आत्मा ऐसे थोड़ी शरीर छोड़ेगी। जब तक आपका हिसाब किताब चुकता नहीं हुआ है शरीर से, तो आत्मा ऐसे नहीं शरीर छोड़ेगी। देखते ना कितने बेचारे बिल्कुल होपलेस केस, अभी मरा, तो भी जीते ही रहते, मरते ही नहीं है। कई कहते ना भाई इतना परेशान हो गए हैं हम, न मरता है न मंजा छोड़ता है, माना बिस्तर पर पड़ा है वो भी नहीं छोड़ता और मरता भी नहीं है, ये दोनों में से एक काम कर लो, या तो मर जाए या तो बिस्तर छोड़े, माना अपना काम खुद कर सके, तो वो भी नहीं, पड़े हैं सालों साल। तो ऐसे ही थोड़ी आत्मा निकलती है, इतना सहज नहीं है। कई बार कोई सुसाइड करने की कोशिश करते हैं तो बच जाते हैं, नहीं मरते हैं। अपने आप को जला देते तो भी मरते नहीं है, हड्डी वड्डी टूट गई सब कुछ, पर जिंदा है। ऐसे भी है, पर अशरीरी बन जाना माना न्यारा बन जाना। हम तो कई बार शिविर में कहते हैं कि लोग दुखी होके भगवान को कहते हैं, भगवान बस उठा लो, मुझे जीना नहीं है। हाँ, इस संसार में मोह माया दुख, हमको जीना ही नहीं, हमको बस उठा लो भगवान इस संसार से। तो हम उनको कहते हैं, दुखी होके क्यों कहते हो, मन से चले जाओ ना, आपका ही घर है। उठा लो मन, कहाँ जाना चाहते हो तो पता ही नहीं है, एड्रेस क्या, कहाँ जाना चाहते हो पता ही नहीं है, उठा लो माना क्या। अच्छा चलो उठा भी ले तो कहाँ जाना है वो मालूम, रास्ते में कहीं भटक जाए तो। अब यहाँ तो बाबा कहते हैं कि आप मन से चले जाओ ना, एड्रेस पता है आपको। अब आप यहाँ बैठे हो और आप बम्बई बोरेवली को कांदेवली या जहाँ भी हो कि आपका घर है वहाँ, वो उसको याद कर रहे तो कितनी देर लगेगी आपको उस घर को याद करने में, एक सेकेंड ना। तो मन से परम धाम को याद करने में कितनी देर लगनी चाहिए, एक सेकेंड। तो चिल्लाते क्यों हो कि उठा लो चले जाओ ना मन से। आपको अपने घर में जाने लिए निमंत्रण थोड़ी चाहिए, कि अपने घर में आपको पहुंचना है तो निमंत्रण मांगोगे कि मुझे निमंत्रण दो तो मैं आऊं ना। भाई किसी की शादी है, किसी का कुछ है तो निमंत्रण चाहिए, निमंत्रण मिलेगा तो जाऊंगा, ऐसे कैसे जाऊंगा, निमंत्रण कहाँ है। ये तो कहीं मेरा इंसल्ट न कर दे, ऐसे ही बिना निमंत्रण के पहुंच गया, शायद मुझे बुलाया तो है नहीं। तो घर में तो अपने घर में तो निमंत्रण नहीं चाहिए ना, कि वहां भी कोई बुलाए तब जाएंगे, भगवान बुलाए तब जाएंगे। वो आपका ही घर है, आपका घर तो आपके बाप का घर। तो फिर कई कहते हमने तो घर देखा ही नहीं है, कैसे हम याद करें। हम कहते क्यों नहीं देखा है, देखा तो है, वहीं से तो आए हो आप, जहां से आए हो वो घर ही नहीं देखा है आपने, वहीं से तो आए हो। जैसे कई रहते कई कहते हम तो कभी रोते नहीं है, जिंदगी में कभी नहीं रोया। अरे बचपन में तो रोया होगा ना, कि नहीं रोया होगा। आपको याद नहीं है ये कहो, ये मत कहो कि रोया ही नहीं है, ये मत कहो कि देखा ही नहीं है, याद नहीं है। कई कहते हैं क्या हम उस परम धाम को कल्पना करें, कल्पना, हम कहते कल्पना हम शब्द मत कहो, याद शब्द कहो। पर अंतर है दोनों शब्दों में, एक है कल्पना करना, जो चीज आपने कभी देखी नहीं, कभी अनुभव नहीं की उसकी कल्पना करते हैं तो कैसे आएगी, नहीं बैठेगा दिमाग में। परंतु ये कल्पना नहीं है, ये याद है। जैसे कई बार कोई हमको याद करता, आपको याद है इतना समय पहले आप ऐसे मेरे घर में आए थे, आपने मुझे ये कहा था, तुम कहते भी याद नहीं है। तो क्या कल्पना करते नहीं, अरे हाँ हाँ याद आ गया, याद आ गया। तो कैसे याद आ गया, उस समय आपने वो दृश्य लाया तो हाँ याद आ गया, बरोबर ये हुआ था। तो ये याद करो, हम कौन है, हम कहाँ के हैं। तो ये आत्म अभिमानी स्थिति क्या है उसको फिर से याद करो, मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं कहाँ की हूँ, क्या हूँ। तो बाबा ने उसका ज्ञान तो पूरा दे ही दिया है, बस वो स्थिति बनानी है और एक सेकंड लगे। तो बाबा कहते हैं तीसरे नेत्र से अपने आप को देखो, ये दो नेत्र बाहर देखने के हैं, और तीसरा नेत्र किसको देखने का है, कहाँ देखने का है, अंदर में देखने का, अपने आप को देखने का है, जिससे आप अपने स्वरूप को पहचान सकते हो कि मैं कौन हूँ। पर किस स्वरूप को पहचानो, ये जो वर्तमान स्वरूप है वो मत देखो, आप अपना भविष्य स्वरूप देखो, आदि स्वरूप देखो, अनादि स्वरूप देखो, पूज्य स्वरूप देखो, देव स्वरूप देखो, फरिश्ता स्वरूप देखो। इसलिए बाबा ये दिल कराते हैं, और ये सब आत्म अभिमानी स्थिति का ही अभ्यास है। तो ये अभ्यास कैसे बढ़ेगा, जब बीच बीच में समय निकालेंगे, काम कर रहे हैं करते करते न्यारे हो जाओ, एक सेकंड लगेगा, बन जाओ शरीरी, और सचमुच ये बहुत काम आएगा। मैं आपको अपना अनुभव सुनाऊं, 11 बज रहे हैं तो मिनट में अपना अनुभव सुनाती हूँ। कि कैसे ये अभ्यास मुझे बड़ा काम आया। कई साल पहले की बात है, मैं समझती हूँ 20 साल हो गए होंगे। एक बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ हमारा, पर कैसे बाबा ने बचा दिया, नहीं तो यहाँ नहीं होते आज हम। कैसे एक्सीडेंट हुआ, बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। जो गाड़ी चला रहा था, हम तो पीछे बैठे थे, वो आगे बैठा था और आगे भी दो जने थे, एम्बेसडर गाड़ी थी और हम तीन बहनें पीछे बैठी थी। तो अचानक कोई व्यक्ति आ गया, कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, था ही नहीं, अचानक आ गया। ये भील लोग होते ना, पहाड़ ये लकड़ी काट करके कोई ऐसे पहाड़ के टुकड़े से ऐसे आ गया अचानक। तो ड्राइवर ने तो देखा ही नहीं, और ऐसे ही जैसे ही देखा तो तुरंत उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की। अब ब्रेक तो लगी नहीं, तो क्या हुआ, ब्रेक ही नहीं लगी तो उसने घुमाने की कोशिश की, घबरा गया तो घुमाने की कोशिश की तो ब्रेक तो क्या लगी, वो व्यक्ति जो था उसका पैर टायर टायर उसके पैर को लगा और वो व्यक्ति गिर गया। और तब तक क्या हुआ कि उसके सिर पर लकड़ी का वो गट्ठे होते ना, ये जो जंगल से लकड़ी काट के जाते, तो वो जंगल से लकड़ी काट के आ रहा था, तो वो उड़ा और उड़ करके हमारी गाड़ी का जो जो स्क्रीन है वो आगे का, उसको आगे लगा और लग करके वो चकनाचूर होता गया। वहाँ आगे का जो स्क्रीन होता है ना, वो ऐसे नहीं टूटता है, वो टुकड़े टुकड़े होकर के जैसे बरसात गिरती है ना, वैसे गिरता है। तो हमने देखा कैसे धीरे धीरे वो आ रहा था। अब तब तक इसने क्या किया, ड्राइवर ने एक्सल को माना वो व्हील को घुमाया तो गाड़ी टर्न हुई, उसको मार करके वो गिरा, वो लकड़ी हमारी गाड़ी पर लगी शीशे पर और ये घुमाया। अब कैसा ड्रामा था, आगे बहुत बड़ा खंभा था, उस खंभे को जाके लग सकती थी और पीछे बहुत बड़ी खाई थी, वो खाई में गिर सकती थी बस गाड़ी अपनी या खंभे को लग सकती थी। और उसी समय मैंने कहा बाबा मैं आ रही हूँ। सचमुच मैंने वो अनुभव किया, हार्ट बीट बंद हो गया बिल्कुल एकदम, मैं इतनी अशरीरी बन गई, मेरा वो जैसे लाइट का रूप मैंने देखा। बस वो एक सेकंड का खेल था। फिर थोड़ी देर के बाद आंखें खोली तो हमने देखा अभी तो जिंदा ही है। तो क्या हुआ कि न वो खंभे को लगी गाड़ी और न ही खाई में गिरी, लेकिन वहाँ झाड़ियाँ थी। अब झाड़ियाँ देखी नहीं थी हमने, वो झाड़ियाँ थी और वो झाड़ियों में जाकर के वो गाड़ी धीरे धीरे जाके सो गई। व्हील तो गिर गई, व्हील निकल आई और वहाँ की दोनों आगे की व्हील ऐसे निकल करके झाड़ियों में सो गए। हम जो तीन बहनें थी, मैं साइड में बैठी थी, तो मैंने तो जोर से उसको पकड़ा हुआ था, पर बिल्कुल शक्ति इतनी आ गई मैं पकड़े ही रखा, तो उसकी जो सीट थी वो थोड़ी सी लगी मुझे। और जो बीच वाली बहन थी वो तो नीचे गिर गई, वो छोटी सी थी तो वो तो सीट के इधर नीचे गिर, और जो साइड में थी वो मोटी थी, वो मेरे ऊपर गिरी। और मैं तो साइड में थी। और ड्रामा अनुसार ऐसा हुआ, जो मेरी वाली जो सीट थी मैंने उसका दरवाजा खुला नहीं, वो बंद ही रहा, नहीं तो वो खुलता तो पता नहीं क्या होता, पर उस तरफ का दरवाजा खुल गया, खुला हो गया मना उस तरफ, और वो मेरे ऊपर गिरी तो वही बच गई, वो बीच वाली भी बच गई, आगे वाले भी बच गए, सब बच गए। और अगर गाड़ी को आप देखते तो लगता कि कोई नहीं बचा होगा इस गाड़ी में, कैसे एकदम खत्म हो गई। तो खैर, तो जैसे तो हम लोग एक दो को बाद में देख रहे हैं, जिंदा है सब, किसी की हड्डी वड्डी नहीं टूटी, सब सलामत है। थोड़ी सी खरोच आई यहाँ मेरे को, और जो बहन नीचे गाड़ी सीट के नीचे गिर गई, छोटी सी थी वो भी बच गई, और वो जो मोटी थी वो तो मेरे ऊपर गिरी तो उसको तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सब बच गए बाबा की मदद से। पर उस समय जो मुझे अनुभव हुआ, आगे वालों को भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो तो आगे ही थे ना, तो मजबूत थे, उनको तो उस समय एम्बेसडर गाड़ी में कोई पट्टा वट्टा तो होता नहीं था, पर उस समय तो पट्टे वट्टे की तो कोई बात, याद से 20 पता नहीं 25 साल हो गए होंगे। लेकिन वो दृश्य मुझे अभी भी याद है, कि वो एक सेकंड का जो अशरीरी स्थिति का अनुभव, और मैंने बाबा को समय याद किया, कोई आत्मा याद नहीं आई, बाबा मैं आ रही हूँ। और मेरा वो अब जैसे वो लाइट का शरीर में जैसे देख रही हूँ उस स्वरूप को, और एकदम दिल की धड़कन तो रुकी गई, पता चला एकदम बस, और फिर देखो तो वापस आ गई। पर वो अशरीरी स्थिति की क्या अनुभूति होती है, वो सचमुच मैंने उस समय की अच्छी तरह से की। तो हम कहते हैं कि ये अनुभूति किस आधार पर हुई, हा? किस आधार पर हुई होगी? बहुत काल का अभ्यास के आधार पर। तो यही हम बाबा हमें यही कहते हैं कि जैसे समय मिले एक सेकंड में न्यारे हो जाओ। तो कछुए को कभी नहीं भूलना, हम कछुए की तरह अपने अंगों को अंदर तो नहीं कर सकते हैं, हाथ पैर अंदर कर ले वो तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन आत्मिक स्थिति तो बना सकते हैं ना। तो आत्मिक स्थिति बनाना माना खाली मैं आत्माओं में आत्माओं में आत्माओं ऐसे कहने की बात नहीं है, लेकिन सचमुच इस देह भान से परे हो जाना। शरीर एक वस्त्र है जो मुझसे अलग है, तो बाबा कहते हैं वस्त्रों को ढीला करो। कोई टाइट वस्त्र पहनता है तो कितना कष्ट होता है उसको, और कष्ट जब होता है, जब वो वस्त्र उतारना होता है, कितनी मुश्किल से वो वस्त्र उतरता है ना। पहले जमाने में वो चूड़ीदार पहनते थे, इतना एक 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 करके वो पैर के अंदर डालते थे, टांग में डालते थे एक एक, और जब निकालना होता था तो भी एक एक करके वो उसको निकालते थे, कितनी मेहनत है। और ढीले कपड़े हो तो एक सेकेंड में उतर जाए। तो बाबा कहते अंत के समय भी जब आत्मा देह से अलग हो जाए तो मक्खन से बाल की तरह निकलो। मक्खन में अगर बाल पड़ता है तो कैसे निकलता है? एक सेकेंड में मक्खन से बाल। और रोटी में बाल पड़ जाए तो रोटी से बाल कैसे निकलता है? टुकड़े टुकड़े होकर के निकलता है। सब्जी से फिर भी थोड़ा कम मेहनत, पर रोटी में पड़ जाए तो, और मक्खन से निकले तो तो बाबा कहते मक्खन से बाल। तो मक्खन से बाल का मतलब ही क्या है कि इतना सहज आत्मा देह से न्यारी हो जाए तो ये शरीर का जो भान है उसमें हल्के हो जाओ, हल्के हो जाओ, जो एक सेकंड में न्यारे हो सको, हलचल बंद। केवल शरीर की हलचल ही बंद नहीं, लेकिन मन बुद्धि की भी हलचल बंद। कई बार बाबा कहते हैं मन का मौन। तो मन का मौन क्या होता है? वैसे तो मौन रखते हैं मुख का मौन, वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर मन का मौन अर्थात इतनी साइलेंस का अनुभव हो जो कुछ विचार ही न चले। ये भी बाबा नहीं कहते हैं कि एकदम कोई शून्य बन जाओ, ब्लैंक बन जाओ, परंतु भरपूरता की अनुभूति हो। दो बातें एक्सट्रीम एंड्स है, एक है बिल्कुल जैसे खाली मन, खाली कुछ भी नहीं सोच रहा है। अब वो खाली मन तो शैतान का घर बन जाएगा। मन को अगर खाली रखने की कोशिश की तो शैतान का घर बनेगा। आप एक मकान को खाली रख के जाओ, कुछ भी नहीं है उस मकान में, बहुत एकदम एयर टाइट करके उस मकान से आप जाओ, कहीं दूर जाना है आप मकान को बंद करके चले जाओ, खाली खाली भी किया और बंद भी, और फिर एयर टाइट भी किया। लेकिन अगर आप 6 मास के बाद उस मकान में आएंगे तो खाली मिलेगा क्या? कौन होगा उसमें? है धूल मिट्टी कीड़े मकोड़े जीव जंतु पता नहीं मच्छर पता नहीं क्या क्या होगा, कहाँ से आए हो? अब तो सब सील करके गए थे, सब कुछ बंद करके गए थे, लेकिन उनको जगह उनको आने में क्या देरी लगती? कहीं से भी आ जाएंगे, हाँ मिट्टी से आ जाएंगे, जमीन से आ जाएंगे, आ सकते हैं। तो जैसे उस खाली मकान में ये सब जीव जंतु कीड़े मकोड़े भी आ सकते हैं, तो ये खाली मन में तो पता नहीं क्या आ जाएगा। तो बाबा कहते खाली मत रखो, शून्य नहीं बन सकते आप, लेकिन मन को दमन की बजाय अमन करो, सुमन करके, उसमें बाबा का वरदान था, वो सुंदर मन बनाओ ताकि वही मन प्रभु को अर्पित हो, उसकी याद में आत्मा रह सके। पर वो तब होगा जब इतने सुंदर विचार मन में लाओगे। तो हमारा योग कोई वो थोड़ी है बस कोई मंत्र जाप करते रहो या एक एक कोई शब्द ही रटो, नहीं है। तो नित्य नया अनुभव आप इस योग में कर सकते हो, नित्य नए विचार आप मन में ला सकते हो, और उन विचारों के आधार पर शून्यता की अनुभूति नहीं लेकिन भरपूरता की अनुभूति। एक होता है शून्य बन जाना, एक होता है इतना भरपूर बन गए जो और कुछ ऐड होगा ही नहीं, इतने भरपूर हो गए। एक खाली गागर हो तो उसमें मिट्टी पत्थर पड़ेंगे आवाज करेगा, आधी गागर हो तो भी आवाज करेगी, पर भरपूर हो तो भरपूर हो तो आवाज नहीं करेगी। तो जो किसी कहते ना अर्ध गगरिया छलकत जाए, अगर मन बुद्धि में ज्ञान है लेकिन अधूरा है, पूरा नहीं है, अंत में पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं है, अंतर में वो खुशी नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी आपको या तो खाली लगेगा या तो जैसे लगता है कि अभी तक संतुष्ट नहीं है। पर बाबा के वो ज्ञान से जो मनन चिंतन करके हम नए नए पॉइंट्स निकालते हैं, मंथन करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, ये भी बहुत मदद करता है। आज भी बाबा ने कहा मुरली चाहिए मुरली चाहिए, सब कहते हैं पर अच्छा मुरली लेते तो हो पर उसका फायदा क्या लेते हो, उसका उपयोग क्या कर रहे हो, दूसरों को कितना सुना रहे हो, सेवा क्या कर रहे हो। नहीं तो हाँ मुरली मिल गई बस पढ़ लिया, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दी, वो नियम। इसलिए वो अशरीरी स्थिति का ऐसा अभ्यास हो कि जब आवश्यकता एक सेकेंड में न्यारी हो जाओ, फिर आओ कर्मों में, छोड़ो कुछ भी नहीं लेकिन पकड़ो किसी को भी नहीं, फंसो कहीं भी नहीं, लगाओ। कल बाबा ने कहा लगाओ तो बहुत बड़ी चीज है, झुकाओ भी नहीं। तो न लगाव हो न झुकाव हो न मन मुटाव हो, दादी ने उस दिन कहा था न चटकना है न अटकना है न मटकना है न हाँ? ये भी कई शब्द है न, चटकना अटकना मटकना हाँ? लटकना ये सबसे परे, मैं अकेली आई हूँ आत्मा अकेली जाना है, न कुछ लाए हैं न ले जाएंगे। और दीदी बड़ी दीदी थी ना, वो हम लोगों को कहती थी रोज सवेरे उठ करके 5 केले खाओ। खा सकते हो 5 केले हाँ, रोज सवेरे उठ करके बहुत ताकत आएगी सारा दिन। 5 केले कौन से 5 केले, हाँ अकेले आए हैं अकेले जाना है, अकेले में अकेला होकर अकेले को याद करो, हो गए 5 केले हाँ? अकेले आए हैं अकेले जाना है, अकेले में अकेला होकर, अकेले में माना एकांत में, अकेला होकर माना मन से भी अकेला, कोई की याद नहीं, अकेला होकर अकेले को याद करना है, माना एक को याद करना है। तो रोज सवेरे ये 5 केले खाओ, ये आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव है। और ये अनुभव अंत में इतना काम आएगा क्योंकि बाबा के पास ही जाना है, घर जाना है, घर जाना है। बड़ी दीदी का भी यही स्लोगन था, बड़ी दीदी थी मनमोहिनी दीदी, बाबा ने एक बार अव्यक्त मुरली में कहा था दीदी को जब भी कोई बात कोई यार बाबा दीदी ये दीदी कहती छोड़ो अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, बस यही दीदी कहती थी, लेट गो, कोई बात को पकड़ो पकड़ के मत रखो, भूलो क्षमा करो और भूल जाओ, छोड़ो छोड़ो तो छूटो, क्योंकि अब सबके कर्मों के हिसाब किताब चुकतू होने का समय है। अगर अभी नहीं करेंगे तो 1 का 100 गुना बढ़ सकता है, और 1 किया तो 100 गुना कट भी सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी भारी मंजिल है और एकदम हम चढ़ाई पर हैं। 1 कदम पीछे तो 100 कदम पीछे गिर सकते हैं, और 1 कदम ऊपर तो चोटी तक पहुंच सकते हैं। जैसे वो है ना खेल दिखाते हैं सांप और सीढ़ी का खेल, तो एक सीढ़ी ऐसी है जो शुरू जो नीचे की पर है, उस पर आ गया तो पूरा ऊपर चली जाएगी सीढ़ी। और एक सांप ऐसा है जो वहां तक पहुंचे तो सीधा ही नीचे ले आएगा, तो वो सांप से बचना है और वो सीढ़ी तक चढ़ना है। और सीढ़ी चढ़ने के बाद सांप आता है, वो जो सांप और सीढ़ी का खेल है। ये नहीं कि सीढ़ी चढ़ने से पहले आता है, सीढ़ी चढ़ने के बाद आता है सांप एकदम 99 पर और वो एकदम 2 पर ले आएगा। तो इसीलिए अंत तक हमको कितना ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन वो ध्यान अंत में सहज कब होगा? जब बहुत काल का अभ्यास होगा। तो चलिए फिर से हम 2 मिनट उसी अभ्यास में बैठेंगे। दादी जी आ गए जी, 11:15। तो चलिए 5 मिनट के लिए बिल्कुल ऐसा अभ्यास करें हम। इनको उठाना भी तो होगा कि 9:30 से बैठे हैं, थोड़ा 5 मिनट उठाइए। तो नहीं दादी आ गई, हाँ तो वैसे भी उठा सकते। हाँ ब्रेक दें। तो चलिए 2 मिनट के लिए, गीत भी बजाना नहीं, बस 2 मिनट बिल्कुल अशरीरी बन जाओ। माइक 1 सेकेंड में आत्मा अशरीरी हो जाए। देह से न्यारी भ्रकुटी के मध्य विराजमान मैं चैतन्य शक्ति हूँ। अशरीरी हूँ, बहुत हल्की हूँ, डबल लाइट हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, दिव्य ज्योति हूँ, मेरे चारों ओर लाइट ही लाइट है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिलू बहन जी, बहुत सुंदर अनुभव सुनते सुनते सभी उन अनुभूतियों में खो गए थे। बहुत अच्छा लगा ना सबको। तो एक हाथ की ताली से आवाज से परे अभी भी देखो कुछ मिनट के लिए भी कितना सुंदर अनुभव सबने किया। बहुत बहुत धन्यवाद।